नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के गीतामृत कार्यक्रम में। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान की व्याख्या। और पिछले बुधवार हमने इस चौथे अध्याय का तीसरा श्लोक लिया था और भाग एक, उसमें से हमने केवल जो पहली दो पंक्तियां हैं उस श्लोक की वो ली थी। तो आज भाग दो इसका हम लेंगे। स एवायम मयातेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। तो परंपरा में ये दिव्य ज्ञान किस प्रकार से अर्जित किया जाता है इसे समझाने के पश्चात भगवान इस श्लोक में अर्जुन को समझा रहे हैं कि विशेष रूप से मैं ये ज्ञान तुम्हें व्यक्तिगत रूप से क्यों दे रहा हूं। अर्जुन, इतने बड़े बड़े राजऋषियों ने ये ज्ञान अपने राजऋषि परंपरा में अर्जित किया, परंतु मैं व्यक्तिगत रूप से अर्जुन तुम्हें सुना रहा हूं। तो अर्जुन के मन में प्रश्न कि क्यों, इसलिए भगवान यहां पर बता रहे हैं स एवायम मया तेद्य। वही दिव्य ज्ञान जो मैंने सूर्यदेव को इस सृष्टि के प्रारंभ में दिया, वही ज्ञान जो सूर्यदेव ने परंपरा में अपने पुत्र या उनके वंशज को दिया। योग प्रोक्त पुरातन, ये पुरातन योग दिव्य ज्ञान मैं आज तुम्हें इसका रहस्य खोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुम मेरे न केवल भक्त हो बल्कि मेरे सखा भी हो। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो हम फिर से हमारे चर्चा के विषय लेंगे पिछले श्लोक से संबंध। पुरातन योग शब्दों की व्याख्या हमने पिछले बुधवार को यह समझा। भक्त एवं सखा शब्दों का महत्व, रहस्यम एवं उत्तमम शब्दों का महत्व। तो यदि आपको याद है पिछले सेटिंग में हमने ये स्लाइड लिया था 4.2 4.3 का कनेक्शन। 4.2 में भगवान से यह ज्ञान राजऋषियों ने प्राप्त किया ये बतलाया गया। तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा कि मेरे अंदर कौन सी योग्यता है, मैं कौन सा राजऋषि हूं, आप मुझे किस बलबूते पर चुने हो इस दिव्य ज्ञान को देने के। तो अर्जुन की ये नम्रता देखते हुए, अर्जुन अपने आप को नगण्य एवं अयोग्य मान रहे थे, तो अर्जुन को ये तसल्ली देने के लिए कि तुम राजऋषि तो छोड़ो, तुम राजा तो छोड़ो, ऋषि तो छोड़ो, राजऋषि तो छोड़ो, तुम तो मेरे भक्त एवं सखा हो। तो हमने पिछली बार ये दो लाइन लिए थे, स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन, आज मैंने तुम्हें वही अत्यंत प्राचीन योग बतलाया है। पुरातन, पुराना, प्राचीन, ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं ना, प्राचीन। तो यहां पर पिछली बार हमने काफी विस्तार से ये पुरातन शब्द इसके ऊपर गौर किया था, तो कुछ डिस्कशन रह गया था पिछली बार से, तो थोड़ा हम ये दो लाइन पर फिर से डिस्कस करेंगे और फिर जो आगे का श्लोक है वो लेंगे। यहां पर एक बहुत अद्भुत चीज हाल ही में मुझे पता लगी, ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये एक अमेरिकन कैथोलिक यूनिवर्सिटी है, सेटन हॉल यूनिवर्सिटी, जहां ये 1856 मेरे ख्याल से, ये 1856 ये यूनिवर्सिटी शुरू हुई, इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है। और अमेरिका में कैथोलिक यूनिवर्सिटी, जहां पर भगवत गीता कंपलसरी है उनके स्टूडेंट्स के लिए। हरी बोल, खुल के बोलिए, कंपलसरी है भगवत गीता। और ये मैं इसलिए ये आपको ये न्यूज दे रहा हूं क्योंकि हाल ही में मैं एक परिवार के साथ वार्तालाप कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि उनके बच्चे यहां नासिक के ही एक स्कूल में एनुअल डे के प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो मैं ऐसी जानकारी के लिए पूछा कि क्या होता है आजकल हमारे स्कूल में, भारतीय स्कूलों में एनुअल डे में क्या होता है। मैं आश्चर्यचकित रह गया, इसको कहते ना बेवाक, आश्चर्यचकित बेवाक रह गया जब मुझे पता लगा कि ये नासिक धाम, ये हमारी भारत भूमि, यहां पर स्कूलों में क्या सिखाया जा रहा है। तो एनुअल डे, उन्होंने कहा कि डांस परफॉर्मेंस होने वाला है, तो हमारे बच्चे उसकी तैयारी में है, डांस परफॉर्मेंस। मैंने कहा डांस किस पर डांस होने वाला है, तो माइकल जैक्सन का कोई सॉन्ग है, माइकल जैक्सन के किसी गाने के ऊपर छोटे छोटे बच्चे वो एनुअल डे फंक्शन स्कूल के उसमें परफॉर्म करने वाले। और मैं उनको कह रहा था कि हाल ही में हम नासिक के कुछ स्कूल कॉलेजों में भगवत गीता सिखाने का प्रयास करने वाले थे, तो हमको ये बताया गया कि नहीं, यहां पर हम सेक्युलरिज्म फॉलो करते हैं। जानते आप सेक्युलरिज्म, धर्म निरपेक्षता, और सेक्युलरिज्म के नाम पर हम किसी भी धर्म या भगवत गीता इत्यादि को यहां पर हम बढ़ावा नहीं देंगे। एक कॉलेज के अथॉरिटी ने तो हमको कह दिया आप इस वेशभूषा में नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों के सामने आप इस वेशभूषा में आएंगे, शर्म आती है हमको। मैंने पूछा किसको शर्म आनी चाहिए, ये है हमारे स्कूल कॉलेजों का हाल। और यहां पर देखिए, तो मैंने कहा कि आपको पता है वो जो जिसके एल्बम पे आप बच्चों को नृत्य कराने वाले हो, अमेरिका में वो किसके लिए विख्यात थे, उनके ऊपर किसके ऊपर केस चल रहा था, छोटे बच्चों को जिसने मॉलेस्ट किया, छोटे बच्चों का चाइल्ड मॉलेस्टर एब्यूजर, उसके गाने पे आप छोटे बच्चों को नृत्य करा रहे हो और ये आपके स्कूल का कौशल है, लानत होनी चाहिए आप लोगों के ऊपर, स्कूल के अथॉरिटीज को कहा कि भगवत गीता सुनाने के बजाय या तो बॉलीवुड के कोई आइटम सॉन्ग अधरंगा नाच वहां पर वो दिखाओगे, या फिर ये व्यक्ति जिसको हमारी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं और उसके ऊपर कहते हैं कि हम सेक्युलरिज्म फॉलो कर रहे हैं, हम भगवत गीता हमारे बच्चों को नहीं सिखा सकते। ये देखिए यहां पर इनके कोई भी अथॉरिटी मेरे ख्याल से कभी भारत आए नहीं होंगे, या कोई आया होगा जिसने इतना यहां कि हमारी संस्कृति का जो खजाना है भगवत गीता का वो ले जाकर वहां पर अपने कैथोलिक स्टूडेंट्स को अमेरिका में कंपलसरी करवाया। तो मैं कह रहा था कम से कम इनसे तो सीखो, यदि हमारी संस्कृति से नहीं सीख सकते तो इनसे तो सीखो। तो जो भगवान कह रहे हैं कि सएवायम, कि वही पुरातन योग आज भी, ये मत समझो कि ये कोई पिछड़ा हुआ ज्ञान है पिछड़े हुए लोगों के लिए, भगवान कह रहा है आज कल परसों नित्य रूप से ये जो ज्ञान है ये शाश्वत है। तो हमारे वैदिक ग्रंथ जो भगवान इस श्लोक में योग प्रोक्त इस योग के विषय में बता रहे हैं, तो तीन उदाहरण दिए गए। श्रील प्रभुपाद ने ये तीन उदाहरण हमारे वैदिक ग्रंथों के संदर्भ में दिए हैं। इंस्ट्रक्शन मैनुअल, हम उसकी भी चर्चा करेंगे कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल का महत्व क्या है। ये उदाहरण मैंने इसलिए आपके सामने प्रस्तुत किए हैं क्योंकि यदि कोई ये समझने लग जाए कि अरे भाई ये तो धर्म ग्रंथ हैं, ये तो केवल जो किसी धर्म को पालन कर रहे हैं उन्हीं के लिए, यदि कोई ये तर्क सामने रखे तो भाई आप धार्मिक हो, आप किसी धर्म को मानते हो, आप ये हिंदू धर्म को मानते हो, वैदिक धर्म को मानते हो, सनातन धर्म को मानते हो, तो आपके लिए होंगे ये। परंतु नहीं, श्रील प्रभुपाद ने जो उदाहरण दिए हैं इससे समझ में आता है कि ये चाहे आप किसी धर्म को मानो या न मानो, भगवान ने ये ग्रंथ किस हिसाब से प्रस्तुत कर दिए हैं। सबसे पहला उदाहरण दिया है इंस्ट्रक्शन मैनुअल का। जो अंतिम उदाहरण वो हम पहले लेंगे, यहां पर स्क्रिप्चर्स की तुलना हमारी मां से की गई। अब देखिए, चाहे बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे वो 40-50 साल का हो जाए, जब वो पैदा हुआ और जितना भी बड़ा हुआ अब तक, तो अपने पिता के बारे में उसे किसने बताया? मां ने। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मेरे साथ एक वाक्या ऐसा हुआ। मुंबई में एक स्टूडेंट, वो मेरे साथ वाद विवाद कर रहा था और वाद विवाद में थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाकर मुझे बोलने लगा, यू आर यूजिंग वन बुक भगवत गीता यू कॉल इट, व्हाई शुड आई बिलीव जस्ट अ बुक। तो बहुत कुछ डिस्कशन हुआ। मैंने उसे पूछा, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, इफ योर लॉजिक इज यू डोंट बिलीव इन बुक्स, हाउ द हेल आर यू बिकमिंग इंजीनियर। हाँ, क्या आप सीधा आसमान से टपके इंजीनियर हो, या किसी स्कूल कॉलेज में जाकर आपने किताबें पढ़ी, या आपको किसी ने पढ़ाया? मैंने कहा, कभी प्रोफेसर को पूछा आपने, व्हाई शुड आई बिलीव दिस इंजीनियरिंग बुक्स, व्हाई शुड आई बिलीव? क्यों नहीं पूछते? ये जो स्टूडेंट्स ऐसे जो तर्क रखते हैं ना हमारे सामने, ये क्यों नहीं प्रोफेसर को पूछते? क्योंकि अगर प्रोफेसर को पूछने लग जाएंगे ये क्वेश्चन, तो डिग्री नहीं मिलेगी। प्रोफेसर बोलेगा, जा भाई, तेरे को इन किताबों पर विश्वास नहीं है, मुझे विश्वास, मुझ पर विश्वास नहीं है, जा तो अपने घर जा, वहां जाकर तू पढ़, सरिता पढ़, जो भी जिस पे तेरे को विश्वास है वो पढ़ जाके। तो क्यों ये हमारे विद्यार्थी प्रोफेसर को क्वेश्चन नहीं करते? इस प्रकार के भगवत गीता के विषय में सारे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि यहां पे कोई डिग्री विग्री तो मिलनी है नहीं, तो पूछते रहो। वहां पर पूछेंगे तो भैया डिग्री नहीं मिलेगी, डिग्री नहीं मिलेगी तो फिर समाज में नौकरी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होगा। तो मैंने पूछा कि वो जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों के विषय में कभी प्रश्न पूछा तुमने? वो कहता है कि नहीं, वो जो पुस्तकें हैं, वो पुस्तकों में जो लिखा गया है, मैं उस पर भी विश्वास नहीं करता। अब उसको आर्ग्यूमेंट जीतना था, तो उसने कहा मैं उस पर भी विश्वास नहीं करता। तो मैंने कहा, अच्छा उस पर विश्वास नहीं करते, तो फिर तुम इंजीनियर कैसे बनोगे? मैं जो उस पर लिखा है उसको एक्सपेरिमेंट करता हूं, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब मुझे पूर्ण विश्वास हो जाता है कि हां, जो उस पर लिखा है वो सही है, तब मैं उस पर विश्वास करता हूं। तो मैंने कहा, तो फिर तुम्हारा दूसरा लॉजिक ये है कि तुम हर चीज को एक्सपेरिमेंट करके फिर विश्वास करते हो? मैंने कहा हां। उसने कहा हां, ये मेरा लॉजिक है। तो मैंने कहा, फिर अब तुम बताओ कि तुम्हारे जो पिताजी हैं, है कि नहीं? सबसे पहले बताओ, है कि नहीं? कि जीसस क्राइस्ट जैसे बिना पिताजी के पैदा हुए? है पिताजी तो? हाँ है पिताजी। तो पिताजी पर कैसे विश्व, तुमको कैसे पता कि वो जो इंसान, वो जो पुरुष बचपन से जिसको तुम पापा डैडी जो भी बुलाते हो, वो तुम्हारे पिताजी? कैसे पता तुमको, बताओ। तो समझ गया कि अब ये आर्ग्यूमेंट कहां जा रहा है। तो मैंने कहा, जब तुम्हारा जो लॉजिक है कि तुम तभी विश्वास करते हो जब एक्सपेरिमेंट करते हो, क्या तुमने एक्सपेरिमेंट किया? बोला हां। देखो अभी वो अपने आर्ग्यूमेंट को जीतने के लिए यहां तक बोल दिया कि मैंने डीएनए टेस्टिंग कराया, अपना डीएनए टेस्टिंग करवाया है पिताजी के। मैंने बोला कब करवाया बताओ? बोला 4 साल पहले। ऐसे ही बोल दिया 4 साल पहले। तो मैंने कहा 4 साल, अभी तुम्हारी उम्र क्या है? 20 साल। तो मतलब बचपन से लेके 16 साल तक जिस आदमी को तुम पापा बुलाते थे वो कौन थे? 4 साल पहले तुम बोले ना तुमने उनका टेस्टिंग करवाया, तो 16 साल तक कौन था वो? तो यहां पर जो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है कि वैदिक ग्रंथ ये हमारी माता के समान है। अब हम वो जो पहला उदाहरण इंस्ट्रक्शन मैनुअल, तो ये हमारा जो मानव जीवन है उसकी तुलना यदि एक हाईटेक कंप्यूटर से की जाए, बहुत हाईटेक है हमारा ये शरीर। कैसे हमारे शरीर के अंदर सारे एप्लीकेशन, जैसे कंप्यूटर के एप्लीकेशन होते हैं ना, ये सारे एप्लीकेशन कैसे चलते हैं? हम हाल ही में हमारे मंथन कार्यक्रम में इस डिस्कशन कर रहे थे कि ये 2 इंच की जीवा, इसके ऊपर कितने सैकड़ों लाखों टेस्ट बड्स डाले हुए हैं कि अलग अलग स्वाद को चखने के लिए इसके अंदर सब फिट है। आंख बंद कर कोई यदि मिर्ची डाल दे तो समझ में आ जाएगी कि क्या डाला है, कोई गुलाब जामुन डाल दे तो समझ में आ जाएगी कि क्या डाला है। उसके बाद जो अंदर पूरे हमारे शरीर का मैकेनिज्म, तो ये उदाहरण दिया गया है कि ये शरीर चाहे किसी धर्म को आप मानते हो या न मानते हो, चाहे नास्तिक हो या आस्तिक हो, शरीर तो है, इस शरीर को तो चलाना है। इस शरीर की तुलना इस मशीन से की गई है, इस कंप्यूटर से की गई। यदि आप कोई मशीन खरीदते हो तो मशीन को चलाने के लिए आपको क्या दिया जाता है? एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल, और बताया जाता है कि ये बटन है ऑन करने के लिए, ये बटन है ऑफ करने के लिए, ये बटन पे हाथ मत लगाना, वार्निंग है। सब कुछ उसमें बताया जाता है। उस हिसाब से हम उस मशीन को चलाते हैं। तो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि ये जो यंत्र, यंत्रारूढ़ानि माया, भगवद गीता में इस शरीर को भगवान ने यंत्र बोला है, एग्जैक्टली मशीन। तो इस यंत्र को चलाने के लिए ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है कि बेटा ये जो यंत्र तेरे को मैंने दिया है, भगवान बोल रहे हैं, अब इस यंत्र को इस प्रकार से इस्तेमाल कर। अब तीन प्रकार से किसी मशीन या यंत्र के साथ आदान प्रदान हो सकता है ग्राहक का। यदि हमने कंप्यूटर से इसकी तुलना की है तो उस यंत्र को अंडर यूज। अभी जैसे कंप्यूटर का अगर उदाहरण लें तो कंप्यूटर में कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड जैसे कि पहले टाइपिंग टाइपराइटर आता था उसका कीबोर्ड, वैसे यहां पर भी कीबोर्ड है। अब ये कंप्यूटर एप्पल कंप्यूटर, सोचो इस कंप्यूटर के अंदर कितने बहुत ही एडवांस्ड एप्लीकेशंस हैं। परंतु यदि मैं इस हाईटेक कंप्यूटर को केवल कीबोर्ड यूज कर रोज एक लेटर टाइप कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं मैं? अंडर यूज। या नींद आई तो तकिया बना के सो लिया, ऐसे कर लिया, तकिया भी बन सकता है इसका। तो कोई मुझे पूछे, भाई आपने एप्पल का लैपटॉप खरीदा, आप क्या कैसे उसको इस्तेमाल कर रहे हो? नींद बड़ी अच्छी आती है उसके, तकिया बनाकर। एक उदाहरण दिया गया है कि ये जो मनुष्य जीवन है ये कीमती हीरे के समान है। अब हीरा, आप हीरे का इस्तेमाल कुत्ते को मारने के लिए भी कर सकते हो। कुत्ता अगर आया तो उसको पत्थर के बदले हीरे से मारो, भाग जाएगा। लेकिन वो हीरे का यूज नहीं है कुत्ते को भगाने के लिए। या फिर होता ना वो पेपर वेट होता है ऑफिस के डेस्क के ऊपर, वो भी ऐसे चमकता रहता है। पेपर वेट देखा आपने? पेपर वेट तो पन्ने उड़ रहे हैं तो कोहिनूर हीरा को लगा दिया पेपर वेट, वो काम करेगा, पेपर को नहीं उड़ाएगा वहां से। लेकिन हीरे उसके लिए नहीं बनाया गया हीरा। वैसे ये मनुष्य शरीर भगवान ने उसके लिए नहीं बनाया कि बस हाँ केवल अब मनुष्य शरीर मिल गया, आहार निद्रा भय मैथुन, बस वो अंडर यूज है। केवल आहार निद्रा भय मैथुन करते रहना इस मनुष्य शरीर से, अर्थात इस कंप्यूटर को केवल रोज लेटर टाइप करने के लिए या तकिया बना के सोने के लिए। अच्छा, दूसरा है मिसयूज। एक है अंडर यूज और एक है मिसयूज। कि आजकल आतंकवादी बहुत आधुनिक तरीके से आतंकवाद कर रहे हैं, पता है आपको? तो आधुनिक तरीके से जो अमेरिका में वो जो ट्विन टावर्स के ऊपर उन्होंने प्लेन क्रैश करवाया, तो बहुत हाईटेक उन्होंने कंप्यूटर्स यूज किए थे, सारे जो उनके नेविगेशंस हैं उसको संभालने के लिए, ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए। तो वही कंप्यूटर, वही मशीन का मिसयूज, तो वही शरीर, वही मानव जीवन का दुरुपयोग, ये भी हो सकता है। और फिर ग्राहक का तीसरा आदान प्रदान होता है प्रॉपर यूज, कि जिसके लिए वो मशीन बनाई गई है उसके लिए वो मशीन इस्तेमाल करो। वॉशिंग मशीन है तो वॉशिंग मशीन की तरह इस्तेमाल करो, उसको उसको कपाट मत बनाओ। तो इसलिए भगवद गीता की तुलना श्रील प्रभुपाद इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल से किए। एक बहुत सुंदर कोट, कई बार लोग पूछते हैं कि भाई आपके भगवान को क्या देखा जा सकता है? केवल यदि इस भावना से कोई भगवान के समक्ष आ रहा है कि मुझे देखना है भगवान को, जब मैं देखूंगा तब मुझे विश्वास होगा। तो मुझे एक सुंदर कोट में हाल ही में आया इसके कनेक्शन में, बिलीव इन कृष्णा लाइक हाउ यू बिलीव इन सन, नॉट बिकॉज यू कैन सी इट बट यू कैन सी एवरीथिंग बिकॉज ऑफ इट। भगवान श्री कृष्ण अर्थात भगवान श्री कृष्ण की वाणी, और इसलिए श्रीमद् भागवत भगवद गीता की तुलना सूर्य से की गई है कि जैसे हम सूर्य को हर समय देखते नहीं रहते आकाश मंडल पर कि सूर्य कहां है, लेकिन सूर्य के वजह से सब कुछ दिखता है, तो वैसे ही भगवान को देखने से ज्यादा जरूरी है कि भगवान के वजह से हमको क्या क्या दिख रहा है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये जो पुरातन वैदिक ज्ञान जिसकी व्याख्या भगवान कर रहे हैं आज के श्लोक में, कुछ उदाहरण हम शास्त्रों से लेंगे कि भगवान ने आज के श्लोक में जो कहा है सयवायम मया तेद्य, कि वही पुरातन प्राचीन ज्ञान हे अर्जुन मैं अभी तुम्हें दे रहा हूं। और श्रील प्रभुपाद ने कहा कि वही ज्ञान जो अर्जुन को भगवान ने दिया, श्रील प्रभुपाद कहे मैं उसे एज इट इज दे रहा हूं। प्रभुपाद ने भी ये श्लोक अपने हिसाब से कहा है ना, भगवत गीता एज इट इज मतलब सयवायम मया तेद्य। तो हम देखेंगे कि कुछ उदाहरण कि ये वैदिक ज्ञान जिसके ऊपर कोई अवरोध नहीं आ सकता समझने के लिए, समझाने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए, यदि कोई कहे कि नहीं ये किसी काल के लिए निर्धारित है, ये किसी स्थान के लिए निर्धारित है, ये किसी स्थिति के लिए निर्धारित है, किसी व्यक्ति के लिए ही निर्धारित है, नहीं, भगवान जो बोल रहे हैं सयवायम दिस नॉलेज कैन बी अप्लाइड इन एनी सर्कमस्टेंस एट एनी प्लेस विथ एनी पीपल, इट इज एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूटली एप्लीकेबल। तो पहला उदाहरण हम महाभारत का ही लेंगे, अर्जुन। अब देखिए एक एक उदाहरण जो यहां पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि यह दिव्य ज्ञान कौन सी स्थिति में सुनाया गया। अब देखिए रणभूमि, रणभूमि पर यह ज्ञान दिया गया जहां पर सब लोग अपेक्षा में एकत्रित हुए थे, वहां पर रणभूमि पर कोई भी यह सोचते हुए नहीं आया था कि यहां पर सत्संग होने वाला है। कोई वहां पर नोटबुक और पेन लेकर नहीं आया, जैसे गीतामृत में बहुत से भक्त नोटबुक पेन लेकर आते ना, सब लोग वहां पर अस्त्र शस्त्र लेकर आए। तो रणभूमि 64 करोड़ योद्धा और पूरे लदे हुए अस्त्र शस्त्रों से एकत्रित वहां पर खड़े हैं, तो धृतराष्ट्र ने जो प्रश्न पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकः पांडवाश्चैव, तो धृतराष्ट्र का प्रश्न क्या था? एक दृष्टिकोण से पूछते हैं कि धृतराष्ट्र ने एकदम सेंसलेस क्वेश्चन पूछा कि भाई तुम्हारे बेटे और पांडु के पुत्र सब वहां पर, अब ऑलरेडी फिक्स्ड है कि वहां पर युद्ध लड़ने के लिए सब लोग एकत्रित हुए, तो धृतराष्ट्र का प्रश्न है क्या किया, क्यों मकूर होता, क्या क्या किया, क्या कर रहे हैं, बताओ क्या कर रहे हैं, उसको तो दिखाई नहीं दे रहा था, क्या कर रहे हैं बताओ, क्या हो क्या रहा है? तो संजय मानो बोले बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाल ही में कुछ विद्यार्थियों को मैं उदाहरण दे रहा था हमारे क्लास में कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल मैच चल रहा, लास्ट ओवर 6 बॉल 5 रन, अपने सचिन तेंदुलकर और धोनी दोनों पिच पर है, 6 बॉल 5 रन, स्थिति ये है, पूरा स्टेडियम भरा हुआ है, सारे कैमरे लगे हुए हैं इधर उधर, कमेंटेटर, अब बस वो लोग धीरे धीरे वो एक्साइटमेंट को बढ़ा रहे हैं, लास्ट ओवर इंडिया पाकिस्तान फाइनल, लास्ट ओवर 6 बॉल 5 रन, सचिन तेंदुलकर अब तैयार हो रहे हैं। वो जो बॉलर है उसके ऊपर कैमरा डालते हैं कि अब बॉलर वो घिस रहा है, बॉल को घिस घिस के थूक लगा रहा है, इतना गीला कर दिया बॉल को, पता नहीं अभी बॉल फिसलेगी क्या होगा, इतना गीला कर दिया, लगा दिया इतना थूक, और वो रन अप ले रहा है 2 किलोमीटर का इतनी दूर से, और एक्साइटमेंट बढ़ रहा है। और फिर अचानक सचिन तेंदुलकर उसको बोलते हैं रुक बेटा रुक, दोनों पिच के बीच में आते हैं, कौन? सचिन तेंदुलकर और धोनी दोनों पिच के बीच में आते हैं, और अब कुछ तो खुसुर पुसुर चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है सचिन तेंदुलकर धोनी को क्या बोल रहे हैं, हेलमेट निकाल के उसके कान में कुछ तो बोल रहे हैं, एम्पायर भी वो भी ताज्जुब कर रहा है, बॉलर सब खड़े हैं, सारे फील्डर्स खड़े हैं, सारे दर्शक खड़े हैं, कुछ पता नहीं लग रहा है क्या बोला जा रहा है। हो सकता है सचिन तेंदुलकर धोनी को पूछ रहे हो आज नाश्ते में क्या खाया बेटे, और धोनी बोल रहे हैं मैंने तो आलू पराठा खाया, तूने क्या खाया? और सारे दर्शक रुके हुए हैं कि अब 6 बॉल हाँ आखिरी ओवर 5 रन, और यहां पर सचिन तेंदुलकर पूछ रहे हैं कि नाश्ते में क्या खाया, धोनी ने कहा कि मैंने आलू पराठा खाया, सचिन तेंदुलकर खाया मैं पूरन पोली खा के आया हूं। तो आपको क्या लगेगा कि दोनों पिच के बीच में लास्ट ओवर में फाइनल मैच में जो मिल रहे हैं क्या ये डिस्कशन कर रहे होंगे? तो धृतराष्ट्र का प्रश्न उसी प्रकार का था कि कुरुक्षेत्र की पिच में अर्जुन और दुर्योधन क्या किए? अरे क्या किए, युद्ध के लिए आए तो युद्ध ही करेंगे, लेकिन हुआ क्या कि वहां पर अर्जुन ने उस रणभूमि को सत्संग भवन बना दिया अर्जुन के प्रश्नों ने, और अर्जुन ने जो भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछे तो वहां पर वो जो पहले से कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र था वो उसका धर्म को और बढ़ा दिया, उसके धार्मिकता को और बढ़ा दिया भगवान की वाणी ने। तो देखिए, कोई यदि कहे कि नहीं भाई भगवद गीता तो केवल शांति से बैठकर सुबह के समय नहा धोकर तिलक लगाकर तभी भगवद गीता समझ में आएगी, मैं तो भाई मेरा तो जीवन ही एक रणभूमि है, कई लोग बोलते ना मेरा जीवन ही एक युद्ध है। तो अर्जुन ने कहां पर कोई कुर्सी पर बैठकर अर्जुन नोटपैड लेकर कृष्ण को नहीं बोले अच्छा अब सुनाओ चलो हाँ मैं लिखता हूं, नहीं। तो कुशलता देखिए वैदिक ज्ञान की कि रणभूमि पर, अच्छा इतना ही काफी नहीं था, बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह 10वें दिन बाणों की शैया पर लेटे हुए, और भीष्म पितामह, और किस प्रकार से अर्जुन ने भीष्म पितामह के शरीर को अपने बाणों से भेद दिया था यह बताया गया महाभारत में कि 2 बाणों के बीच में एक कोई उंगली भी न डाल सके, इतने बाण भीष्म पितामह के शरीर में अर्जुन ने मारे थे आर पार। आर पार, बाणों की शैया मतलब जो बाण आर पार जाकर भीष्म पितामह उस के ऊपर गिर गए, तो कितनी पीड़ा। और ऐसी अवस्था में युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण युद्ध के पश्चात जो जाते हैं, तो भीष्म पितामह उस अवस्था में उपदेश दे रहे हैं। अब देखिए, कई बार ये सब उदाहरण हम इसलिए ले रहे हैं, कई बार हमारे जीवन में यदि कोई शारीरिक तकलीफ है तो हम सबसे पहले गीता बंद करते हैं, हाँ? कि भाई इसको तो साइड में रखो, अभी ये जो मेरी पीड़ा को दूर करने वाली किताब बताओ। तो भीष्म पितामह अगर कोई कहे कि शारीरिक पीड़ा के वजह से मैं गीता या वैदिक ज्ञान को नहीं अपने जीवन में अपना रहे हूं, तो भीष्म पितामह की पीड़ा देखिए। भीष्म पितामह महाभारत में एक भी श्लोक भीष्म पितामह ने नहीं कहा युधिष्ठिर महाराज से, अरे कम से कम जाके थोड़ा बेटाडीन तो लेके आ, सोफरामाइसिन कुछ तो लगा, यहां पे इतना पेन हो रहा है, तो प्रश्न पूछ रहा है, वो भी इतने कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछ रहा है। नहीं, अगला उदाहरण, प्रहलाद महाराज को लेक्चर कहां दिया गया? आज ही सुबह हम भगवत अपना श्रीमद् भागवत का श्लोक जो सीरीज में चल रहा है, थर्ड कैंटो में कपिल मुनि बता रहे हैं माता देवहूति को कि गर्भ में शिशु की हालत क्या होती है, कि अपने माता के मलमूत्र से, रक्त, पस, इन सब से घिरा हुआ शिशु इतनी पीड़ा में, और ऐसी अवस्था में प्रहलाद महाराज नारद मुनि जो कि बाहर कयाधु को लेक्चर दे रहे हैं, कयाधु उनकी मां का नाम, कयाधु को जो लेक्चर नारद मुनि दे रहे हैं, प्रहलाद महाराज ऐसी अवस्था में गर्भ के अंदर उस लेक्चर को इतना अटेंटिवली सुने कि उसके बाद उन्होंने आगे कोई लेक्चर सुना नहीं। पैदा होने के बाद जितनी भक्ति उनकी तीव्र दिखती है हमको, वो उस एक लेक्चर के वजह से जो उन्होंने अपने गर्भ, माता के गर्भ में नारद मुनि जो बाहर से बोल रहे थे, वो उन्होंने उस प्रकार से श्रवण किया। तो यदि कोई कहे कि मुझे थोड़ा आरामदायक स्थिति में ये वैदिक ज्ञान अपने जीवन में अपनाना है, तो यहां पर प्रहलाद महाराज का उदाहरण है कि इतने विकट परिस्थिति में प्रहलाद महाराज ने उस ज्ञान को किस भावना से, कि जीवन भर उन्होंने भगवान की भक्ति इतनी तीव्रता से, वो जो नींव डाली थी नारद मुनि ने जब वो अपनी माता के गर्भ में थे। परीक्षित महाराज जिनको शाप दिया गया, 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली, शापित परीक्षित महाराज। कोई यदि हमें कह दे कि भाई 7 दिन में, यहां पर बोलते हैं ना ऑफ होने वाले आप, ऑफ बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड मैं सुना हाल ही में, ऑफ हो गए वो तो मैंने कहा, मैंने पूछा तो फिर कोई पैदा होता तो ऑन होता है क्या तो हाल ही में मैंने सुना कि वो ऑफ हो गए। तो अभी ये इंटरेस्टिंग वर्ड आजकल लोग इस्तेमाल करते हैं, ऑन होना, ऑफ होना, और बीच में पॉज हो जाते हैं ना बीच में पॉज भी, और फास्ट फॉरवर्ड, रिवाइंड तो नहीं हो पाएंगे। तो यदि कोई हमको सूचित करे कि 7 दिन में स्विच ऑफ होने वाला है आपका, तो उस समय हम सबसे पहले किसके विषय में सोचेंगे? टेस्ट है, टेस्ट है ये, कि यदि हमको ये कोई सूचित कर दे, नोटिस दे दे, क्या हम उस समय श्रीमद् भागवत के विषय में सोचते हैं? एक अमेरिका में बहुत सीरियल फेमस हुआ था, और वो सीरियल उन्होंने जो बनाया टीवी सीरियल, वो ये था कि एक व्यक्ति उसको डॉक्टर कह देते हैं भाई तुम्हारे 6 महीने बाकी है, कुछ उसको जानलेवा बीमारी हो जाती है, तो हर एक एपिसोड में दिखाया गया है कि कैसे वो बस अब जितने उसके पैसे हैं, जितनी जायदाद है उसको बस लुटा रहा है, ऐश कर रहा है, कभी हवाई में जा रहा है, कभी स्विट्जरलैंड जा रहा है, कभी ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कभी सिंगापुर जा रहा है, हर एपिसोड में उसके सब उसकी जो क्या क्या तफरी कर रहा है, क्योंकि 6 महीने बाकी तो क्या फायदा है ये सब पैसे रख के, तो ऐश करो। तो इतना पॉपुलर हो गया वो अमेरिका में सीरियल। अब खाली वो तो एक मनगढ़ंत कोई कहानी फिक्शन ये सब, वो इतना पॉपुलर हो गया कि अब 6 महीने तक ही तो सीरियल चलेगा, क्योंकि स्टोरी में यही बताया गया था। तो 6 महीने बाद सब लोग बोले पॉपुलर डिमांड पे बंद मत करो, कुछ तो कहानी में ट्विस्ट लाओ, बढ़ाओ इसको। तो कहानी में इतना पॉपुलर हो गया, उनको भी पता नहीं था जिसने सीरियल बनाया था कि इतना पॉपुलर होगा। तो फिर 6 महीने बाद कहानी में ट्विस्ट लाया कि डॉक्टर ने उसको कुछ ऐसी दवाई दे दी, और 6 महीना और 6 महीना, अब और 6 महीना, हर हफ्ते अब वो यहां एंजॉय कर रहा है, वहां एंजॉय कर रहा है, और सब लोग उसको देखकर एंजॉय कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा यदि हमको मरने का नोटिस मिलना चाहिए तो ऐसा मिलना चाहिए, और ऐसे ही मरने से पहले हम लोग को ऐश होनी चाहिए। यह है पाश्चात्य विकृति। वैदिक संस्कृति क्या है कि जब परीक्षित महाराज को न्यूज मिला तो परीक्षित महाराज ने यही नहीं कहा कि अभी मेरी सारी जायदाद लाओ चलो घूमने फिरने चलते हैं, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और तुरंत वो गंगा के तट पर सुखदेव गोस्वामी के श्रीमुख से बिना खाए बिना सोए बिना पिए बिना कुछ किए 7 दिन 7 रात उन्होंने श्रीमद् भागवत। यहां पर पहले कुछ उदाहरण हम शारीरिक समस्याएं देख रहे हैं, यहां पर सोचो कि मानसिक स्थिति किसकी, जिसको बताया गया कि 7 दिन में तुम मरने वाले, और वो भी कैसे, तक्षक वो सांप आकर तुमको डसने वाला है जो सबसे जहरीला है पूरी सृष्टि में, वो तक्षक सांप आकर तुमको डसने वाला है 7 दिन में। तो इस मेंटल स्टेट में वो श्रीमद् भागवत श्रवण कर रहे हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि चाहे हमारा मेंटल स्टेट कितना भी स्ट्रेसफुल हो, चाहे फिजिकल स्टेट कितना भी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो, सारे उदाहरण है यहां पर, वैदिक ज्ञान योग प्रोक्त पुरातन। ध्रुव महाराज, 5 वर्षीय ध्रुव महाराज, उनकी सौतेली मां ने पिता के गोद में बैठने नहीं दिया, बदले की आग। ध्रुव महाराज भगवान को ढूंढने नहीं जा रहे थे, उनके अंदर बदले की आग थी कि मुझे ये न के न प्रकारेण बदला लेना है, ये मेरे पिता से और ये सौतेली मां से। तो बदले की आग में निकले हुए नारद मुनि उनको फिर से तपोज्ञान और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका मंत्र दिया, इसका जप करो, इस प्रकार से तप करो मधुवन में जाकर। तो उस कोई कई बार होता है ना, कई बार लोग क्रोधित अवस्था में रहते हैं, बहुत घर में यदि झगड़ा हो जाए, सदस्यों के बीच में झगड़ा हो जाए, और झगड़े में यदि क्रोध में कोई आग बबूला है, उस समय जाके आप बोलो भगवद गीता का श्लोक, तो जनरली रिएक्शन कलयुग में क्या होता है कि शर्म नहीं आती तेरे को, यहां पे मैं गुस्से में हूं और तू मेरे को गीता बता रहा है, अभी तो तुमको सुननी चाहिए। तो नारद मुनि ने जब ध्रुव महाराज को उस अवस्था में जो दिव्य ज्ञान दिया, तो ध्रुव महाराज ने नारद मुनि के ऊपर क्रोध नहीं किया कि हाँ, उस अवस्था में भी ध्रुव महाराज ने उस ज्ञान को न केवल समझा बल्कि अपने जीवन में अपनाया। प्रसिद्ध उदाहरण श्रीमद् भागवत से गजेंद्र, गजेंद्र की कहानी, जहां ये मगरमच्छ ने गजेंद्र के पैरों को पकड़ रखा है और 1000 साल तक उनकी जद्दोजहद चल रही थी गजेंद्र और उस मगरमच्छ की। तो सोचो कि दोनों कितने शक्तिशाली, 1000 साल तक चल रहा है उनका फाइट चल रहा है, और 1000 साल के अंत में गजेंद्र ने फिर हताश होकर कमल का पुष्प अपने सूंड में लेकर भगवान श्री नारायण को अर्पित करते हुए उन्होंने जो दिव्य प्रार्थनाएं कही, गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थनाएं जो 8वें स्कंद में हैं, कहा गया है कि वो प्रार्थनाओं को यदि कोई पढ़ भी ले लो रोज तो उसका मोक्ष निश्चित है। तो गजेंद्र ने, और ऐसे ऐसी प्रार्थनाएं हैं बहुत ही ज्यादा फिलोसॉफिकल प्रार्थनाएं वो, लेकिन अगर हम उसकी पार्श्वभूमि देखें तो किस अवस्था में गजेंद्र ऐसे फिलोसॉफिकल प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं, जब उनका एक पैर मगरमच्छ ने पकड़ रखा है। यदि हम अपने आप को गजेंद्र की स्थिति में डालें, कोई हमारा पैर, कोई मच्छर भी बैठ जाता तो हम किताब बंद करके मच्छर को ढूंढते। सोचो मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया है और उसके बाद में बोला, बोल प्रार्थना, प्रार्थना बोलो, प्रार्थना बोलो, मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया, तुम प्रार्थना की बात कर रहे हो। तो ये सारे उदाहरण जो भगवान श्लोक में बोल रहे हैं, सएवायम मयाते द्य, कि अर्जुन तुम रणभूमि मत देखो, तुम तुम्हारी मानसिक स्थिति मत देखो, शारीरिक स्थिति मत देखो, तुम तुम्हारी सामाजिक पारिवारिक स्थिति मत देखो, क्योंकि ये जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं ये योग प्रोक्त पुरातन, ये ज्ञान अभी जो तुम्हें मैं दे रहा हूं यही ज्ञान राजऋषियों ने अपनी ऐसी विकट परिस्थितियों में अर्जित किया मुझसे और अपने जीवन के उद्देश्य को सिद्ध किया, और वही भगवान हम सबको सिखा रहे हैं। कि ये सारे उदाहरणों से हम कोई बहाना नहीं दे सकते कि भाई मेरी मानसिक स्थिति नहीं है इस वैदिक ज्ञान को समझने के लिए, मेरी शारीरिक स्थिति नहीं है, मेरी पारिवारिक स्थिति नहीं है। नो वन कैन गिव एनी एक्सक्यूज व्हाट्सएवर दैट बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई कैनॉट एक्सेप्ट दिस वैदिक नॉलेज। कृष्णा हैज लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। सॉरी अबाउट दैट, कोई बहाना नहीं दे सकते। अब भगवान आगे कह रहे हैं, भक्तों से में सखा चेती रहस्यम ये तद उत्तमम। तो अर्जुन को ये जो शंका हो रही थी कि मेरे अंदर कोई योग्यता है क्या, आपने ऐसे ऐसे दिग्गजों को ये दिव्य ज्ञान दिया है, तो भगवान कहे क्योंकि तुम मेरे भक्त एवं सखा। अब सबसे पहले हम भक्त ये शब्द को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे टीकाकारों ने भक्त शब्द के दो अर्थ बताए यहां पर। इसे केवल साधारण ये नहीं समझ लेना चाहिए कि कई लोग बोलते ना कि मैं इसका भक्त हूं, मैं उसका भक्त हूं, कृष्ण का भी भक्त हूं। समटाइम्स पीपल लाइक दे से दैट इन द वेस्ट पीपल से इन वन ब्रेथ दे से आई लव गॉड ऑल्सो एंड आई लव बर्गर ऑल्सो। दोनों के लिए एक ही वर्ड है उनके लिए, लव। तो कई बार भारत में भी भक्त बोल देते हैं कि मैं इसका भक्त हूं, मैं सचिन तेंदुलकर का भक्त हूं, मैं कृष्ण का भी भक्त हूं। जब मैच नहीं होता तो कृष्ण का भक्त हूं, तो भक्त किसे कहते हैं? हमारे बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि जिसके अंदर अनुराग और जो अनुरक्त। अनुराग का अर्थ है भावनाएं, बहुत ही सूक्ष्म शुद्ध भावनाएं भगवान के प्रति। और अनुरक्त का अर्थ है जो उन भावनाओं को लेकर अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगाए, वो अनुरक्त। तो यहां पर ये दो जो दो गुण हैं भक्त की, जो दो परिभाषाएं दी गई हैं, तो यदि हम मन और बुद्धि को लें, हमारे माइंड और इंटेलिजेंस को लें, तो कैसे एक परिपूर्ण भक्त बनता है जो कि अपने अनुरागी मन को भगवान के विषय में सोचने में, उस भावना से भगवान की अनुभूति करने से और भगवान से प्रेम, थिंकिंग फीलिंग लविंग। अच्छा, क्यों अनुरक्त और बुद्धि का संबंध बताया गया है? विशेष रूप से कलयुग में आप बहुतों को मिलेंगे जो कहते हैं प्रेम है भगवान के प्रति, है प्रेम है, प्रेम है। और पूछो कि भाई भगवान के प्रति यदि प्रेम है तो क्या आपने आपके जीवन में उन प्रेमी भगवान के विषय में कुछ किया? किया करना क्या है? प्रेम है, कुछ करना होता है क्या? जैसे हम अक्सर ये उदाहरण देते ना, बेटा पिताजी को कहता है, पिताजी मैं प्रेम करता हूं आपसे, बहुत प्रेम करता हूं, किसी बेटे ने ऐसा प्रेम नहीं किया होगा मैं जैसा करता हूं, नहीं किया होगा। पिताजी, बेटा प्यास लगी पानी तो लो, प्रेम नहीं, लेकिन मुझे अभी प्यास लगी, सुना मैंने, सुना क्या, पानी कहां से आ रहा है, सुना ही नहीं आपने, प्रेम करता हूं बोला मैंने, नहीं लेकिन अभी तो प्यास, भाड़ में गया पानी और प्यास, मैं बोल रहा हूं प्रेम करता हूं मैं। तो इस प्रकार का अगर कोई व्यवहार करे, केवल कहता रहे प्रेम करो लेकिन कुछ करे नहीं, इसलिए मैं कहता हूं इंग्लिश के ग्रामर के विरुद्ध होगा ये, अकॉर्डिंग टू मी लव इज अ वर्ब। व्हाई? वर्ब मींस देयर इज एक्शन, सो लव मींस यू डू समथिंग, देयर हैज टू बी सम एक्शन। तो क्यों यहां पर अनुरक्त ये जो गुण हैं भक्त के, उसके विषय में कहा गया है कि डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसीजन मेकिंग, कि तुम्हारे अंदर जो भगवान के प्रति यदि भक्ति या प्रेम है तो उसके सहारे क्या तुम अपने जीवन को ढाल रहे हो? क्या आर यू टेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन दैट लव? आर यू डिस्क्रिमिनेटिंग बेस्ड ऑन दैट लव? विवेक बुद्धि, डिस्क्रिमिनेशन, दैट यस व्हाट कृष्णा लाइक्स व्हाट कृष्णा डिसलाइक्स आई विल डिस्क्रिमिनेट एंड फॉलो दैट। माई लाइफ्स डिसीजंस विल बी बेस्ड ऑन माई लव फॉर कृष्णा। तो मेरे जीवन की जो अनुरक्ति है वो मेरे अनुराग पर निर्भर करेगी, तब जाकर वो कंप्लीटनेस, एक भक्त की परिपूर्णता इसके अंदर बताई गई। वही अर्जुन ने, भगवान ने जो अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम न केवल मेरे भक्त हो बल्कि सखा हो, और भगवान ने सिद्ध कर दिखाया अपने कार्यों से, अर्जुन जो भगवान को अपना सखा और भगवान को अपना भगवान माने एक भक्त के रूप में, तो अर्जुन ने भी अपने कार्यों से सिद्ध किया। यह है कंप्लीट फ्रेंडशिप, कंप्लीट लव। अब हम यदि भक्त अर्जुन का उदाहरण लें, क्योंकि यहां पर भगवान डायरेक्टली अर्जुन को बोल रहे हो कि तुम मेरे भक्त हो, भक्तों से में सखा चेत, तो अर्जुन ने अपना मन और बुद्धि, अनुराग और अनुरक्ति ध्यान में रखना, माइंड और इंटेलिजेंस की तुलना हमने किसे की है, अनुराग और अनुरक्ति को अर्जुन ने कैसे अपने जीवन में, विशेष रूप से वहां पर रणभूमि पर, तो कृष्णानुस्मरण, अर्जुन युद्ध करते समय भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध कर रहे थे, तो बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल अर्जुन जैसे भक्त का है जिसके अंदर अनुराग भी था और अनुरक्ति भी थी। अर्जुन केवल भगवान को यह नहीं बोले कि बहुत अच्छा लेक्चर दिया आपने, एकदम परफेक्ट आपका गीता का लेक्चर, अब मैं चलो महाप्रसादी करते बैठ के अब मैं स्मरण करूंगा आपका, नहीं। वही अर्जुन जिनके हाथ से गांडीव छूट चुका था, वही अर्जुन जो हताश होकर बैठ चुके थे, भगवान का स्मरण कर उन्होंने गांडीव उठाया और युद्ध कौशल दिखाया जिसके लिए उन्होंने अपनी बुद्धि और अपने इंद्रियों को लगाया। केवल वचनों से उन्होंने भगवान का गुणगान कर फिर खुद को जो करना है वो नहीं किया। होता क्या है जनरली कि लोग बोलते हैं क्या भगवान ने गीता सुनाया, गीता जैसा ग्रंथ नहीं, गीता जैसा परमोच्च ग्रंथ नहीं, गीता के उपदेश जो है वो तो सर्वोपरि है। आपने आपके जीवन में कितना उतारा है? नहीं, वो देखेंगे ना। तो यहां पर अर्जुन ने दोनों युद्ध के समय जो भगवान ने कहा माम अनुस्मर युद्धे च, कि अर्जुन तुम मेरा स्मरण करते हुए मुझे अर्पित करते हुए युद्ध करो, तो उन्होंने युद्ध का कौशल भी दिखाया अपनी बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा। और केवल इसलिए युद्ध नहीं लड़ा कि मुझे जीतना है या मुझे युधिष्ठिर महाराज को राजगद्दी पर बिठाना है, नहीं, मैं धर्म की स्थापना कर रहा हूं क्योंकि भगवान ने मुझे कहा है कि इस ये धर्म युद्ध है और इस युद्ध के वजह से धर्म की स्थापना होगी। तो ये है अनुराग और अनुरक्ति, मन और बुद्धि का समन्वय जो कि अर्जुन को ऐसे भक्त बनाता है। भक्त शब्द की व्याख्या, भगवान ने जो भक्त शब्द इस्तेमाल किया है, श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर इसके ऊपर उत्प्रेक्षा की है कि इस श्लोक में जो भगवान भक्त शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे समझ में आ जाना चाहिए क्या, कि भक्त के साथ भक्ति होनी चाहिए, है कि नहीं, और किसके लिए, भगवान के लिए। तो श्रील प्रभुपाद हर समय जो मायावाद सिद्धांत होता है कि ये गीता किसी व्यक्ति ने नहीं सुनाई, कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं थे। आपको विश्वास नहीं होगा, बहुत से टीकाकार वो कहते हैं कि ये एक ज्योति, मैंने एक बार एक भगवद गीता के ऊपर टीका पढ़ी थी, उन्होंने कहा ये एक ज्योति से ज्ञान आया है। एक बार एक व्यक्ति, एक साधु महात्मा, वो उनको कोई मिल नहीं रहा था प्रवचन सुनने के लिए, तो अंदर बहुत तलब लगी हुई थी सुनाने की, कोई सुन नहीं रहा है, तो ढूंढ रहे हैं कोई 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 श्रोता ही नहीं है कोई सुनने के लिए, तो इतने ज्यादा आतुर हो गए, यहां वहां कोई कोई मिल ही नहीं रहा है। तो देखे कि मंदिर के आसपास कोई मिलेगा ताकि उनके अंदर थोड़ी तो कोई धार्मिकता या सत्वगुण कुछ होगा। तो मंदिर से बाहर निकलते हुए एक नवयुवक को देखा, तो उसके हाथ में एक दिया था, तो उसको पकड़ लिया कि यहां से शुरू करता हूं। उसके हाथ में दिया जल रहा था, तो उसको कहता है बेटे जानता है ज्योति कहां से आती है? तो वो समझ गया कि अभी मैं पूछूंगा नहीं पता, तो ये शुरू हो जाएगा अपना लेक्चर देना कि ज्योति कहां से आती है। पूछा ज्योति कहां से आती पता है? तो उसने वो दिए को फूंक मार के बुझा दिया, बोला अब बता गई कहां। और वो निकल गया अब ढूंढता रह गई कहां। तो कई बार लोग जो ये कहते हैं कि नहीं 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 कृष्ण ने ये गीता नहीं सुनाई, ये केवल एक ब्रह्म ज्योति ऐसी ज्योति थी एब्स्ट्रैक्ट, वहां से अचानक सुनाई देने लगी। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यदि भगवान ने कहा है भक्तों सी में सखा चेती, अर्जुन तुम भक्त हो तो किसके हो, ये घोड़ों के नहीं मेरे। तो लॉजिक ये है कि यदि कोई कह रहा है कि ये पत्नी है तो फिर पति भी तो होना चाहिए ना, कि बिना पति की पत्नी हा? या कोई कहे कि ये पिता है, पिता है तो फिर बेटे कहां है, बच्चे कहां है। तो अगर कह दिया कि ये पत्नी है या पिता है तो उसके साथ अपने आप बुद्धि लगाकर समझ जाना चाहिए कि यदि ये पत्नी है तो किसकी है, कोई पति भी है इसका, यदि ये बाप है तो किसका है, कोई बेटा भी होगा। तो भगवान ने जब कह दिया भक्त तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं तो समझ लेना चाहिए, यदि हमारी साधारण भी बुद्धि हम लगाएं तो समझ लेना चाहिए कि अगर भक्त बोल रहे हैं भगवान तो फिर भगवान भी होने चाहिए, और फिर उन दोनों के बीच में क्या है, भक्ति। श्रील प्रभुपाद की एक्सपर्टीज देखो, क्या एकदम सिंपल लॉजिक यूज किया श्रील प्रभुपाद की। अब सखा, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की जो घनिष्ठ मित्रता, यहां पर भगवान ने अर्जुन को न केवल अपना भक्त बल्कि सखा इस रूप में भी माना है। तो हम संस्कृत व्याकरण के अनुसार जो सखा शब्द भगवान ने इस्तेमाल किया है उसकी व्याख्या जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शब्दकोश, संस्कृत शब्दकोश के अनुसार समप्राण सखामत, सखा का अर्थ जो बताया गया है कि समप्राण दो जो सखा हैं, अब उनके लिए दो पार्टी जरूरी है, एक अकेला तो बोल नहीं सकता मैं सखा हूं, किसका, खुद का नहीं, कोई दूसरा भी तो होना चाहिए जैसे भक्त और भगवान। तो सखा समप्राण होने चाहिए, सखा का अर्थ है एक प्राण। जो बोलते ना कई बार लोग बोलते हैं कि हम क्या कहते हैं, दो बदन एक जान, हाँ दो शरीर एक जान। तो सम प्राण और सखा के सुख को अपना सुख जो मानता है वो है समप्राण सखा। सखा के दुख को अपना दुख मानता है, यह भी जरूरी है ये समझना, इसलिए उसको अलग से लाइन लिखा है मैंने, नहीं तो कई बार क्या, हाँ भाई दो दो मित्र हैं, तेरा सुख मेरा सुख। जैसे एक मंत्री का भाषण चल रहा था तो मंत्री ने भाषण में कहा कि हम जो अब चुनाव में जीतने वाले हैं तो हम आश्वासन देते हैं कि जो भी यदि इस राज्य में बीमार है तो उसकी बीमारी मेरी, जो भी अपनी मां को अपना मां मानता है मैं भी उसे अपना मां मानता हूं, पिता को वो अगर अपना पिता मानता है तो मैं भी उसको पिता मानता हूं, भाई मानता है तो मैं भी उसको भाई मानता, पत्नी पति पत्नी के बीच में डिस्कशन चल रहा था तो ऐसे ही इत्मीनान से बैठे हुए थे नदिया के किनारे, तो पत्नी ने पति से पूछा कि अचानक यदि मैं मर गई तो तुम क्या करोगे। अभी अच्छा खासा नदी की लहरें देख रहे थे, ये ऐसा एकदम कठिन क्लिष्ट प्रश्न पूछ दिया। तो पति ने पूछा, मैं मर गया तो तुम क्या करोगी? तो उसने कहा, मैं, मेरी तो बहन है, बहन के साथ रहूंगी, मैं भी वही करूंगी। हरे कृष्ण। तो सखा के दुख को अपना दुख जो मानता है, सखा के जीवन को जो अपना जीवन मानता है, और सखा की मृत्यु को अपनी मृत्यु जो मानता है। तो इसलिए भगवान ने भी जो अलग अलग एडजेक्टिव्स है फ्रेंड के, उसमें से इस श्लोक में मित्र नहीं कहा, बंधु नहीं कहा, दोस्त वो तो नहीं, यहां पर सखा। तो ये पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है इस वर्ड का, और इसका प्रूफ है महाभारत में। तो महाभारत में इसका प्रूफ ये है कि श्री कृष्ण और युधिष्ठिर इनके बीच में संवाद। तो भगवान श्री कृष्ण ये आदि पर्व में नहीं, भीष्म पर्व में, भीष्म पर्व में महाभारत में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि ये जो अर्जुन तुम्हारा भाई है ना, ये मेरा सखा क्यों है? तो तीन चीजें भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को कही, ये न केवल मेरा सखा बल्कि मेरा संबंधी भी, क्योंकि कुंती भगवान की बुआ। तो भगवान ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि ये अर्जुन न केवल मेरा सखा है बल्कि, तो युधिष्ठिर महाराज कहे कि तो मैं भी तो संबंधी हूं। भगवान ने कहा कि वो मेरा न केवल सखा बल्कि संबंधी, उसके साथ साथ वो मेरा शिष्य। परंतु युधिष्ठिर महाराज के रोंगटे खड़े हो गए जब भगवान ने इसके पश्चात एक वाक्य कहा। युधिष्ठिर महाराज को भगवान कहते हैं कि अर्जुन एक ऐसा सखा संबंधी शिष्य है मेरा कि यदि अर्जुन कहे तो मैं मेरे चमड़ी काट कर दे सकता हूं उसके लिए, और वो अपना मांस काट कर दे सकता है मेरे लिए। यह है हम दोनों का घनिष्ठ संबंध सखा के रूप में। बोलो श्री कृष्ण अर्जुन की। तो जब युधिष्ठिर महाराज ने सुना कि भगवान ये कह रहे हैं कि भगवान अपने स्वयं का मांस काटकर अर्जुन के लिए बलिदान कर सकते हैं और अर्जुन भी वो कर सकता है, तो ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को नहीं चुना भगवद गीता पर्सनली देने के लिए। अब अर्जुन और भगवान के बीच की जो मित्रता है, ये सीखने लायक है कि यदि मित्रता होनी चाहिए तो उसकी बुनियाद क्या होनी चाहिए, मित्रता की बुनियाद क्या होनी चाहिए। ये हम इसलिए यहां पर बताना चाह रहे हैं क्योंकि यदि हम भक्त भी आपस में मित्रता करना चाहें तो उस मित्रता की बुनियाद क्या होनी चाहिए। और अर्जुन और श्री कृष्ण ने अपने उदाहरण से हाईएस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रेंडशिप स्थापित किया। इतना आजकल लोग फेसबुक में फ्रेंड्स बना रहे हैं, ये ट्विटर और ये वो और कोट यहां पर वहां पर, इतने सारे फ्रेंड्स। तो यहां पर असली फ्रेंडशिप क्या होनी चाहिए बताया, थ्री थिंग्स, अफेक्शन, प्रोटेक्शन एंड डायरेक्शन। ये तीन कार्डिनल प्रिंसिपल्स, और विशेष रूप से कृष्ण और अर्जुन के बीच की जो मित्रता बताई गई है उसका बेसिस क्या है, ये तीन चीजें। और किसी भी ट्रू फ्रेंडशिप के बेसिस ये तीन चीजें होनी चाहिए। तो अब हम एक एक गुण देखेंगे कैसे कृष्ण और अर्जुन के बीच में अफेक्शन, प्रोटेक्शन और डायरेक्शन ये प्रदर्शित हुआ है। तो सबसे पहले अफेक्शन यदि हम देखें तो भगवान ने अर्जुन के प्रति अपना अफेक्शन कैसे दिखाया, सारथी बनकर। सारथी को आज की भाषा में हम क्या कहेंगे, ड्राइवर। आप अगर किसी को कई बार पूछो कि भाई तुम क्या करते हो, नहीं मैं ड्राइवरी करता हूं, थोड़ा शर्म आती बोलने को लोगों को कि मैं किसी का ड्राइवर हूं या शोफर हूं। यहां पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान 64 करोड़ योद्धाओं के सामने, सबके सामने आज दिन तक भगवत गीता का कवर पेज क्या है, भगवत गीता का कवर पेज भगवान ने ये, या हमारे भक्तों ने श्रील प्रभुपाद जैसे, उन्होंने ये नहीं दिया कि भगवान कोई बड़े आसन पर बैठकर गीता का प्रवचन अर्जुन को दे रहे हैं, नहीं रथ हांक रहे हैं। और क्यों भगवान अर्जुन के सारथी क्यों बने, स्नेह अफेक्शन के कारण। भगवान को कोई अचानक शौक नहीं चढ़ा था कि चलो रथ चला के देखते, बहुत दिनों से घोड़ों को नहीं चलाया, घुड़सवारी करते, नहीं। अर्जुन के लिए यहां तक महाभारत में वर्णन है कि रोज जो सारथी के नियम है, भगवान सारथी के नियमों का पालन करते। रोज सुबह अर्जुन के उठने से पहले भगवान उठते, 18 दिन जो युद्ध हुआ, भगवान पहले उठते, घोड़ों को साफ करते, तैयार करते, और अर्जुन के जो तंबू के सामने उस रथ को लाकर खड़ा करते, रोज घोड़ों को खिलाते, नहलाते, धुलाते, तैयार कर, क्योंकि ये सारथी का कर्तव्य, वो पूरा कर्तव्य निभाते थे। और अर्जुन जब रथ पर आरूढ़ होने वाले हैं उस दिन सुबह रणभूमि में जाने के लिए, तो सारथी का कर्तव्य है कि उसके नीचे अपना हथेली रखे, उसके हथेली पर पैर रखकर वो रथ के ऊपर आरूढ़ होगा। ये सब भगवान अर्जुन के लिए किए, किसके कारण, स्नेह। और युद्ध के समय बताया गया है कि जो सारथी है वो पीछे नहीं मुड़ता, जब वो रथ चला रहा है तो सारथी पीछे नहीं मुड़ता। और क्योंकि पूरे रणभूमि में इतनी आवाजें हो रही हैं युद्ध की, तो जो रथी है वो सारथी को कैसे बताए कि भाई तुम मेरे रथ को या तो बाएं लो या दाएं लो, पैर से बताता है वो, पैर से मारकर, क्योंकि वो खड़ा है, वो युद्ध कर रहा है, लेकिन उसे कहना है सारथी को अभी बाएं लो, तो वो बाएं कंधे पर अपना बायां पैर मारता है, तो सारथी को समझ जाना चाहिए कि अभी लेफ्ट टर्न लेना है। तो भगवान श्री कृष्ण उस प्रकार के सारथी बने हुए कि अर्जुन युद्ध के समय भगवान के कंधों पर अपने दाएं बाएं पैर मारकर इंडिकेट किया करते थे कि कहां मुड़ना है। ये सब कुछ भगवान ने जो स्वीकार किया, किसके किसके लिए, वो जो स्नेह उनका भगवान अर्जुन के प्रति। तो यहां पर जो पहला प्रिंसिपल फ्रेंडशिप का, क्या, अफेक्शन, वो दिखता है कृष्ण और अर्जुन के बीच। दूसरा प्रोटेक्शन, वही महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह वो इस प्रकार से युद्ध कर रहे थे कि उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं अर्जुन को मारकर रहूंगा, पांचों पांडवों को मारकर रहूंगा। और वो प्रसिद्ध कथा हम जानते हैं कि जब भीष्म जब वो प्रतिज्ञा लेते हैं तो भीषण प्रतिज्ञा होती है उनकी हर समय, तो 5 बाण निकालकर दुर्योधन को दे दिए कि ये कल मुझे देना, मैं अपने पास नहीं रखूंगा, तुम मुझे निकाल कर देना ये 5 बाण जो है, इन 5 बाणों से 5 पांडवों की मृत्यु निश्चित। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने यह सुना, अर्जुन उस दिन युद्ध के पश्चात थके सो रहे, और महाभारत में वर्णन है कि भगवान जब अर्जुन से मिलने जाते हैं, बताने पूछने जाते हैं कि भाई कल भीष्म ने ये प्रतिज्ञा ली है तो भगवान देखते हैं अर्जुन इत्मीनान से लेटे हुए हैं और अर्जुन की जो सांसें चल रही थी नींद के समय, अर्जुन की जो सांसें चल रही थी, जो सांस बाहर आ रही थी और जो सांस अंदर जा रही थी उसमें केवल कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो सांसों से केवल कृष्ण का नाम आ रहा था। तो भगवान ने अर्जुन को उठाया कि भाई भीष्म ने ये प्रतिज्ञा ली है। तो अर्जुन कहे तो आपकी समस्या है, मेरी नहीं है, क्योंकि आपने ही गीता में मुझे बताया कौंतेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति, कि हे कुंती पुत्र ये घोषणा कर दो, ये ऐलान कर दो कि तुम जैसा भक्त वो कभी उसका नाश नहीं हो सकता। अर्जुन ये बोलकर करवट बदलकर फिर सो गए। उनको इतना विश्वास था कि मेरे सखा भगवान श्री कृष्ण वो मुझे अवश्य बचाएंगे। तो भगवान ने जो प्रण लिया था कि मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो यहां पर ये प्रसिद्ध चित्र जो है, भगवान रथ का पहिया उठाए भीष्म पितामह के सामने दौड़े और अर्जुन रोक रहे भगवान को। तो भगवान ने अर्जुन को इसके द्वारा क्या दिखाया और हम सबको क्या दिखाया कि धिक्कार है मेरे प्रण को, भाड़ में गया मेरा प्रण, मेरा जो अर्जुन यदि वो मरने जाने वाला है तो मैं अपने प्रण की भी परवाह नहीं करता, मैं किसी वादे की भी परवाह नहीं करता। यदि मेरा भक्त किसी दुविधा में, किसी कठिनाई में, किसी परेशानी में है तो मैं अर्जुन जैसे मेरे भक्त मेरे सखा की रक्षा अवश्य करूंगा। यह है भगवान श्री कृष्ण, ऐसे भगवान जो अपने भक्त की ऐसी भक्ति को स्वीकार करते हैं और ऐसा प्रेम दर्शाते हैं, प्रोटेक्शन। इतना ही नहीं, भगवान ने गीता सुनाकर डायरेक्शन, तो उनकी जो मित्रता, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता खोखली नहीं थी, उसके अंदर जो सब्सटेंस, उनके फ्रेंडशिप के अंदर जो सब्सटेंस क्या था, डायरेक्शन, डायरेक्शन थ्रू द टाइमलेस विजडम ऑफ भगवद गीता। बहुत ही सुंदर एक कथा महाभारत में वर्णन है कि युद्ध पूरा हो चुका है, बहुत वर्षों पश्चात, युद्ध के बहुत वर्षों पश्चात अर्जुन प्रभास क्षेत्र जो कि द्वारका के पास है, तो प्रभास क्षेत्र गुजरात में अर्जुन जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को जब पता लगता है कि मेरा मित्र मेरा सखा अर्जुन आ रहा है, तो द्वारका से भगवान प्रभास क्षेत्र जाते हैं। ऐसा नहीं कि भाई तू इधर से हो क्या, नहीं, भगवान प्रभास क्षेत्र जाते हैं और अर्जुन को जिस तरीके से मिलते हैं, अब यहां पर कोई रणभूमि नहीं है, युद्ध हो चुका है, धर्म की स्थापना हो चुकी है और एकदम इत्मीनान से दोनों मिल रहे हैं। तो इतना सुंदर वर्णन है कि दो सखा कैसे मिलते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आलिंगन करते हुए और एक वहां पर निकट ही पर्वत, प्रभास क्षेत्र में एक पर्वत रैवतक पर्वत, उस पर्वत में अर्जुन को ले जाते हैं और वहां पर पहले से द्वारका वासियों को बोलते हैं कि यहां पर मेरे और अर्जुन के लिए, और कोई नहीं होना चाहिए, मेरे और अर्जुन के लिए यहां पर खाने पीने की व्यवस्था, हमारे पिकनिक की व्यवस्था करो, केवल मैं और अर्जुन रहेंगे। तो सारी व्यवस्थाएं उस पर्वत के ऊपर ये करते हैं, केवल कृष्ण और अर्जुन, और उस पर्वत पर वो उस दिन का भोजन ग्रहण करने के बाद वो वहां पर लेटे हुए अर्जुन और कृष्ण एक ही शैया पर लेटे हुए वो याद कर रहे हैं उनके पहले के मित्रता के दिन, और उसके पश्चात फिर भगवान कहते हैं कि अब तुम मेरे साथ द्वारकापुरी चलो। तो जब अर्जुन को भगवान द्वारका ले आते हैं वहां प्रभास क्षेत्र से, तो अर्जुन जैसे ही द्वारका में प्रवेश करने वाले हैं तो पूरी द्वारका नगरी अर्जुन का स्वागत करने के लिए आती है। जितने वहां पर नर्तक वो सारे आते हैं, वाद्य गीत सबको लेकर वहां पर। और वहां पर क्या अनाउंसमेंट होता है द्वारका में कि वो भगवान के सखा आ रहे हैं जिनके लिए भगवान ने युद्ध को रोका और गीता सुनाई। वो भगवान के सखा अर्जुन आ रहे हैं। तो ऐसी पॉपुलैरिटी अर्जुन की वहां पर हुई तो द्वारका में, हालांकि भगवान द्वारकाधीश, परंतु जब अर्जुन को भगवान द्वारका लेकर आए तो महाभारत में वर्णन है कि भगवान के प्रति कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, सभी अर्जुन अर्जुन अर्जुन। तो ये व्यासदेव जी कहते हैं कि ये जो अर्जुन का दबदबा द्वारकापुरी में किसने स्थापित किया? भगवान ने स्थापित किया। तो व्यासदेव कहते हैं कि इतने समय तक अर्जुन के विषय में, अर्जुन के गुणगान भगवान करते आ रहे थे, तो इतना सब कुछ उन्होंने जो सुन रखा था अर्जुन के बारे में, इसलिए जब भगवान अर्जुन को द्वारका लाए प्रभास क्षेत्र से तो भगवान की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था, सब अर्जुन की तरफ। और उसमें भी ख्याति भगवान की ही। तो ये श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में इतना जो घनिष्ठ संबंध बताया गया। अब जो गीता के संदर्भ में हम और तीन गुण यदि देखें कि इनके, जो भगवान ने कहा है कि अर्जुन तुम न केवल मेरे भक्त बल्कि सखा, कृष्णा बिकेम फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड, जो हम कह रहे हैं अफेक्शन प्रोटेक्शन डायरेक्शन, कि किसी भी मित्रता के अंदर ये सारी चीजें अगर नहीं हैं, तो आजकल जो लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, फेसबुक फ्रेंडशिप। फेसबुक फ्रेंडशिप क्या है? पिछले साल एक व्यक्ति से मैं मिला लंदन में, विद्यार्थी, डिप्रेशन का विद्यार्थी, मतलब विद्यार्थी जो डिप्रेशन में। तो मैंने पूछा कि भाई आपके कोई, यू डोंट हैव एनी फ्रेंड्स? तो उसने कहा आई हैव 6,375 फ्रेंड्स हुम आई हैव नेवर सीन। सो बोलते क्या है फेसबुक के बारे में, मैं बोलता हूं दैट पीपल आर हैविंग 6,375 फ्रेंड्स ऑन फेसबुक हुज फेसेस दे हैव नॉट सीन। ये है फेसबुक फैमिली। कि आजकल हाँ स्थिति ऐसी हो रही है घरों के अंदर कि पिताजी फेसबुक पर मैसेज छोड़ रहे हैं, सन डिनर इज रेडी कम डाउनस्टेयर्स, बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक भाषा आजकल सीख गया है तो पूछता है माता पिता से व्हेन वाज आई डाउनलोडेड, मतलब कब पैदा हुआ था। एक हाल ही में मेरे मित्र ने मुझे, कई पुरानी यादें आपको ताजा हो जाएंगी, आज का आधुनिक भाईचारा, उसकी एक ईमेल उसने की मेरे मित्र ने, तो आधुनिक भाईचारा इस प्रकार से हा? जो एक बहुत फेमस ब्रिज के नीचे डायलॉग हुआ था हा? मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो आजकल क्या बोलता है वो, मेरे पास फेसबुक है, मेरे पास ट्विटर है, व्हाट्सएप है, लिंक्डइन है, तुम्हारे पास क्या है? ये बोलता है मेरे पास काम है। तो फाइनली प्रश्न पूछा जाए तो मां किसके पास है? खैर, हम फिर से आते हैं भगवद गीता पर। रहस्यम येतद उत्तमम, यह गीता का ज्ञान निश्चित रूप से उत्तम रहस्य। अंतिम लाइन है श्लोक की, जहां पर भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं जो ये पुरातन प्राचीन योग का ज्ञान जो तुम्हें दे रहा हूं, ये है क्या? ये कोई साधारण नहीं, ये सबसे उत्तम रहस्य। तो अर्जुन, भगवान ने ये अचानक, यहां तक ठीक था समझना हमको कि पुरातन प्राचीन ज्ञान अर्जुन को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अर्जुन भक्त हैं, सखा हैं। तो अर्जुन यहां पर बहुत सुंदर, हमारे टीकाकारों का उद्गार है। तो यहां पर वो एक प्रश्न अर्जुन का एक और प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के समक्ष, कि अर्जुन ने भगवान को मानो ये पूछा कि आप मुझे भक्त बोल रहे हो, सखा मान रहे हो, तो कहीं ये तो नहीं कि जैसे सखाओं के बीच में जनरली जो बातें होती हैं वो थोड़ी लाइट होती है ना, सखाओं के बीच में, जैसे बॉस और मालिक और सेवक के बीच में उनकी जो बातें होती है वो सीरियस बातें होती, एम्प्लॉय और बॉस की सीरियस बातें होती। तो यहां पर अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि यदि आप मेरे को सखा मान रहे हो तो फिर क्या हमारे बीच में जो वार्तालाप चल रहा है, क्या ये लाइट एक फ्रेंडली टॉक तो नहीं चल रहा है? इसलिए भगवान ने लास्ट लाइन क्या बोली है, नहीं, मैं जो तुम्हें सुना रहा हूं अर्जुन, ये रहस्य है। न केवल रहस्य बल्कि उत्तमम, उत्तम रहस्य। उत्तम का अर्थ क्या है? उत्त का अर्थ है ऊपर, एक है उत्तर कि थोड़ा ऊपर, उत्तमम का अर्थ है सबसे ऊपर, कि जो सबसे ऊपर सबसे ऊंचा रहस्य है अर्जुन, वो सबसे ऊंचा रहस्य मैं खोलकर तुम्हें सुना रहा हूं। अभी हमें लग रहा होगा कि भाई हम तो गीता कहीं से भी लेकर ये श्लोक और पूरी गीता पढ़ सकते, तो इसमें सीक्रेट क्या है, रहस्य क्या है? रहस्य इसके ऊपर वाली लाइन है। कौन सी लाइन? जब तक हम अर्जुन जैसे भक्त नहीं बनते तब तक ये सीक्रेट सीक्रेट ही रहेगा। तो भगवान जो बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं निश्चित रूप से, ही बीच में जो ही भगवान ने इस्तेमाल किया है, ही का अर्थ है निश्चित रूप से, तुम्हें उत्तम रहस्य सुना रहा हूं। कोई फ्रेंडली टॉक्स नहीं चल रहा है हमारा, हालांकि तुम मेरे सखा हो, लेकिन बहुत ही सीरियस रहस्य मैं तुम्हें खोल कर दे रहा हूं। क्यों, तुम्हें क्यों दे रहा हूं, बाकियों को सुनाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि तुम मेरे भक्त और मेरे सखा हो। ये कैसे समझ में आएगा? कोई कहेगा, अरे भाई धृतराष्ट्र भी तो सुन रहा था, क्या फर्क पड़ा उसको? उसके लिए सीक्रेट सीक्रेट ही रहा। क्यों? क्योंकि न तो वो भक्त था न सखा। तो यहां पर एक भौतिक स्तर पर भी अगर हम जानने की कोशिश करें, अब देखिए मिस्टर अंबानी, यदि आपको जानना है, मिस्टर अंबानी से आप मिलो, मिस्टर अंबानी इंटरव्यू ले रहे हैं किसी का, रिलायंस में किसी को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, तो उसको यदि कोई अंबानी को पूछता आप कौन सी साबुन इस्तेमाल करते हैं रोज बताइए, क्यों बताओ भाई, तू कौन है पूछने वाला? कौन सा मंजन, कौन सा मंजन रोज सुबह उठते हैं, कौन सा मंजन इस्तेमाल करते हैं? मंजन कैसे करते हैं? ऊपर घुमाते हैं, ऐसे साइड में घुमाते हैं ब्रश को, तो क्यों बताएगा उसको? लेकिन उसके जो निकट के सदस्य, पारिवारिक सदस्य, जो उसकी बीवी बच्चे, वो सब जानते हैं कि सुबह उठते मंजन करते कि नहीं करते, वो सब जानते हैं। कौन सा टूथपेस्ट कितना निकालते हैं, नीचे से वो ट्यूब को दबाते हैं, ऊपर से दबाते हैं, ये भी जानते होंगे वो। कई बार कई लोग होते हैं ना, ट्यूब को नीचे से दबाते हैं, कई लोग ऊपर से दबाते हैं, कई लोग बीच से दबाते हैं। आप लोगों ने ये क्या चल, हाँ ये भी रहस्य है, बहुत पर्सनल किसी की आदतें होती हैं, वो केवल जो उनके बहुत निकट रहने वाले उनको पता है कि कौन सा टूथपेस्ट कौन से हाथ में, पीछे से कि आगे से कि बीच से कितना निकालते हैं ब्रश के ऊपर, कैसे घिसते हैं ऊपर से नीचे, वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल कितनी बार घिसते, कितना कुल्ला करते, कौन सी साबुन कितनी बार रगड़ते, सब पता रहता है। क्यों 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 इस सब रहस्य पता है? क्योंकि प्रेम, घनिष्ठता, इट इज नॉट ऑफिशियल, इट इज फैमिलियल, फैमिलियल। तो ये है ओपन सीक्रेट। अब हम अंत में चैतन्य महाप्रभु के जीवन से ये कथा लेंगे डायरेक्टली आज के श्लोक से, जिसका कनेक्शन, यदि ये कथा हमने नहीं समझी तो हम लोग ये श्लोक को नहीं समझ पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण, दोनों में कोई अंतर नहीं, ब्रजेंद्र नंदन सच्ची शुद्ध होइलो से, जो वही भगवान श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन, वो अब माता शची के पुत्र बनकर जो आए चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु अपनी दक्षिण भारत की यात्रा में जब निकले, तो दक्षिण भारत में श्रीरंगम में उन्होंने एक दृश्य देखा। दृश्य क्या देखा उन्होंने कि एक ब्राह्मण जो गीता को अपने हाथ में लिए रो रहा है, रो रहा है, पढ़ नहीं रहा है, केवल रो रहा है, गीता को हाथ में लिए रो रहा है। और बहुत सारे वहां के श्रीरंगम के पंडित वो उपहास कर रहे हैं, वो खिल्ली उड़ा रहे हैं। क्या खिल्ली उड़ा रहे हैं? कि इसको एक अक्षर पढ़ना लिखना नहीं आता, अनपढ़ गंवा रही है, लेकिन गीता रोज लेकर रोता रहता है, पता नहीं क्यों रोता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा, चैतन्य महाप्रभु को लगा नहीं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, ये जिस प्रकार से अश्रु प्रवाहित कर रहा है, इसकी जो भावनाएं यहां पर अश्रु के रूप में बहा रहा है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। तो चैतन्य महाप्रभु जाकर मिलते हैं इस अनपढ़ ब्राह्मण से, जाकर चैतन्य महाप्रभु मिलते हैं। तो ये ब्राह्मण को जब चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि भाई तुम हाथ में गीता लिए हो लेकिन गीता को तुम पढ़ नहीं रहे हो, और केवल गीता हाथ में लिए तुम रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो, क्या मांग रहे बताओ। तो यहां पर इस सुंदर श्लोक में विप्र, विप्र अर्थात वो ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं, विप्र कहे मूर्ख आमि शब्दार्थ ना जानी, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। कि मुझे शब्दार्थ नहीं पता गीता का, शुद्ध अशुद्ध तरीके से मैं इस गीता को पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं, क्यों? गुरु आज्ञा मानी, मेरे गुरु ने कहा है इसलिए। तो इसका पूरा ट्रांसलेशन इस प्रकार से है, द ब्राह्मण रिप्लाइड, आई एम इलिटरेट एंड देयरफॉर डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, समटाइम्स आई रीड द गीता भगवत गीता करेक्टली एंड समटाइम्स इनकरेक्टली, बट इन एनी केस आई एम डूइंग दिस इन कंप्लायंस विद द ऑर्डर्स ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर। मेरे गुरु ने आज्ञा दी है, शुद्ध अशुद्ध गीता पोड़ी शब्दार्थ न जानी, गुरु आज्ञा मानी। ये जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो चैतन्य महाप्रभु ने जो कृपा इस ब्राह्मण के ऊपर की वो जानने लायक है। 6 रिवॉर्ड्स इस पूरी कथा में जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा वरदान, 6 रिवॉर्ड्स अवॉर्डेड बाय सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड लॉर्ड चैतन्य। सबसे पहले कि ये ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं कि मेरे जो आंखों से आंसू आ रहे हैं, मैं आपको बताऊं क्यों आ रहे हैं, कि मैं जब कवर पेज देखता हूं, वो अंदर गए नहीं, खोला ही नहीं गीता अभी तक, खाली कवर पेज में मैं जब देखता हूं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ हांक रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्जुन के ड्राइवर बने, केवल वो सोचने मात्र से मेरे आंखों से आंसू टप 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 आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, केवल वो प्रेम उन दोनों का। आज के श्लोक में भगवान भी क्या कह रहे हैं, भक्तों सी में सखा। तो ये ब्राह्मण ने ये जान लिया, आज का श्लोक पूरा उसका तात्पर्य अपने जीवन में उतार कर वो जो आंखों से आंसू निकल रहे थे आज के श्लोक को जानकर निकल रहे थे कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्जुन का रथ हांक रहे हैं, क्या प्रेम है इन दोनों के बीच में। तो सबसे पहला रिवॉर्ड इस ब्राह्मण को मिला क्या, सीइंग लॉर्ड कृष्णा इन भगवद गीता। क्यों इसको हम रिवॉर्ड बोल रहे हैं, क्योंकि कितने बड़े बड़े टीकाकार हैं आज जो गीता के ऊपर प्रवचन देते हैं, टीका किए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को भगवान ही नहीं मानते। तो हर समय रहस्य भगवद गीता रहती है उनके लिए, परंतु ये व्यक्ति जो कि अनपढ़, सबसे पहला रिवॉर्ड क्या, ही सीइंग लॉर्ड कृष्णा इन गीता। तो ये जो 6 रिवॉर्ड हमको देखने हैं कि यदि हमें चैतन्य महाप्रभु या भगवद गीता की कृपा चाहिए तो ये रिवॉर्ड्स हमारे अंदर आ रहे हैं क्या। सबसे पहले आर वी सीइंग कृष्णा इन द गीता, दैट इज द फर्स्ट रिवॉर्ड। सेकेंड रिवॉर्ड, ही इज रीडिंग वॉज सर्टिफाइड पर्सनली। हम वो श्लोक अलग से लेंगे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने सर्टिफाई किया। अब देखो कि जो ओरिजिनल ऑथर हैं गीता के वो कलयुग में आकर इस साउथ इंडियन ब्राह्मण को सर्टिफिकेशन दे रहे हैं कि भाई तूने गीता समझी है खाली, और जितने पंडित घूम रहे हैं यहां पर बड़े बड़े पांडित्य अपना दिखा रहे हैं, इनके लिए अब तक गीता रहस्य बनी हुई है, तूने गीता सही मायने में समझी है। तो दूसरा रिवॉर्ड क्या, सर्टिफाइड बाय ओरिजिनल ऑथर। सोचो कि मान लो कोई अगर आइंस्टाइन की थियोरी के ऊपर PhD कर रहा और आइंस्टाइन आकर सर्टिफिकेट देता है कि हाँ भैया तूने मेरे रिलेटिविटी थियोरी के ऊपर तूने जो PhD किया है मैं सर्टिफाइड करता हूं उसको, तो उसका जो ऑथेंटिसिटी कितना रहेगा। सेकेंड रिवॉर्ड। थर्ड रिवॉर्ड, भगवान ने स्वयं उसको आलिंगन किया, और भगवान का आलिंगन कोई साधारण आलिंगन नहीं हुआ करता था। चैतन्य महाप्रभु जिसको भी आलिंगन करते थे तो डायरेक्टली उसके अंदर कृष्ण प्रेम संचारित करते थे। सो द थर्ड रिवॉर्ड, रिसीव्ड पर्सनल लविंग एम्ब्रेस ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। मतलब ये बता रहा है कि भगवान ने सर्टिफिकेशन दूर से कहीं नदिया से नहीं दिया, नवद्वीप से नहीं दिया, पर्सनली जाकर वहां पर। फोर्थ रिवॉर्ड, उस व्यक्ति ने, उस ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि आप जो मेरे सामने आज मेरे आलिंगन किए हो, मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि ये जो रथ हांकने वाले कृष्ण और आप दोनों में कोई अंतर नहीं। इतने उस समय चैतन्य महाप्रभु को केवल एक सन्यासी मानते थे या एक भावुक भक्त मानते थे, परंतु ये पहली दफा चैतन्य महाप्रभु को मिलते ही मान लिया कि जिसने गीता सुनाई वही मेरे सामने आए हैं। बहुत बड़ा इनाम मिला इनको इस साक्षात्कार के द्वारा। और चैतन्य महाप्रभु वहां पर 4 महीने रहे और 4 महीने लगातार रोज चैतन्य महाप्रभु ने इस ब्राह्मण को अपना संग दिया। वो चैतन्य महाप्रभु जो एक जगह पर केवल कुछ मिनट या कुछ घंटे रुकते थे, 4 महीना चैतन्य महाप्रभु ने इसे अपना संग दिया। और सबसे महत्वपूर्ण रिवॉर्ड जो इसको मिला, चैतन्य महाप्रभु ने उन 4 महीनों में पर्सनली वही गीता जो अर्जुन को, जो सूर्यदेव, इक्ष्वाकु, मनो, इतने बड़े बड़े राजऋषियों को जो भगवान ने गीता सिखाई, चैतन्य महाप्रभु पर्सनली वही गीता इसे 4 महीने सिखाए। सो दीज वर दी 6 rewards विच दिस साउथ इंडियन ब्राह्मिन गॉट, हिज लव फॉर भगवद गीता। तो वो जो श्लोक जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने इस ब्राह्मण का उदाहरण लेकर जो सर्टिफिकेशन दिया, फाइनल वर्डिक्ट ऑफ लॉर्ड चैतन्य ऑन द सीक्रेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग भगवद गीता, अंतिम लाइन क्या है आज के श्लोक की? रहस्यम ही एतद उत्तमम। तो इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु को है गीता पाठे तुम्हारे अधिकार, तुम्ही से जाना है गीतार अर्थ सार। तो बहुत सुंदर इसका ट्रांसलेशन है। श्री चैतन्य महाप्रभु टोल्ड द ब्राह्मण, इंडीड यू आर एन अथॉरिटी इन द रीडिंग ऑफ भगवद गीता, वॉट एवर यू नो कॉन्स्टिट्यूट्स द रियल पर्पोर्ट ऑफ भगवद गीता। गीता पाठे तुमार ए अधिकार, गीता पाठ का यदि किसी को अधिकार है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुमको है, तुमको अधिकार है। तुम्ही से जाना है ए गीतार अर्थसार, क्योंकि तुमने गीता के अर्थों का सार जान लिया है। और गीता के अर्थों का सार क्या है? आज का श्लोक, आज का श्लोक क्या है? भक्तों से में सखा चेती, कि जब तक हम भगवान श्री कृष्ण के भक्त नहीं बनते अर्जुन की तरह, जब तक हम अर्जुन के पदचिन्हों पर चलकर भगवान श्री कृष्ण के सखा नहीं बनते, तब तक ये रहस्य ही गीता रहेगी। और इस ब्राह्मण के द्वारा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये सर्टिफिकेट साइन कर दिया उसको, तुम हो अधिकारी। ये जितने पंडित घूम रहे हैं, ये इनके ऊपर बिल्कुल अधिकार नहीं है गीता का, तुम्हारे पास है गीता का अधिकार। और इसलिए जैसे कि एक गाय अपने बछड़े को जब देखती है तो दूध उमड़ कर आता है उसके स्तनों से, तो गाय के स्तनों से जो दूध आता है वो अपने बछड़े को देखकर आता है, और बछड़े को देखने का अर्थ है प्रेम। तो वैसे ही श्लोक में जो बताया गया है, सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थवत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत, कि यदि पूरा वैदिक वाङ्मय एक गाय के समान है तो भगवान श्री कृष्ण का नाम क्या है? मदन गोपाल। वो गोपाल सर्व उपनिषदो गावो, सारे उपनिषद, सारे विभिन्न प्रकार के वेद ग्रंथ क्या कह रहे हैं कि ये गोपाल नंदन दोग्धा ये दूह रहे हैं इस गाय को। कौन सी गाय को? पूरे वैदिक ज्ञान की गाय को दूह रहे हैं। और पार्थ वत्स, अर्जुन जो जिनका नाम है पार्थ, उनकी तुलना वत्स से, यहां पे जो बछड़ा बैठा हुआ है। तो क्यों ये दूध निकल पा रहा है? क्योंकि प्रेम जो है, वो प्रेम के वजह से वो दूध निकल रहा है। तो ये है भगवद गीता का रहस्य। इसलिए आज के श्लोक में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, भगवान ने बहुत पर्सनल लेवल पर अर्जुन को न केवल ये वैदिक वाङ्मय की जो कुशलता है उसके विषय में बताया, जो इसका रहस्य है उसके विषय में बताया, बल्कि पर्सनली व्यक्तिगत रूप से भगवान अर्जुन को क्यों दे रहे हैं, ये पूरे वैदिक, ये पूरे भगवद गीता का ज्ञान ये रहस्य खोलकर अर्जुन को दिया है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जो हमने कहा, जिन्होंने भगवद गीता एज इट इज प्रेजेंट की यथारूप, तो आज का जो श्लोक है सएवायम मया तेद्य, कि वही जो ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया, उससे पहले सूर्यदेव इत्यादि को दिया, श्रील प्रभुपाद हमारे एज इट इज हमको प्रस्तुत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, कैसे हम हमारा जीवन जिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।